ही, लेकिन हम सबका यही अनुभव रहा होगा कि जब भी उनका क्लास सुनते हैं तो पलक भी नहीं झपकती है। सही है ना? पलक भी नहीं झपकती है। क्यों? क्योंकि उनका एक एक लिंक के अनुसार क्लास चलता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम सागर के किनारे खड़े हैं, अभी धीरे धीरे एक स्टेप सागर की ओर लेते जाएंगे। पहले थोड़े सी लहरें होंगी, फिर धीरे 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 हम सागर के एकदम तले तक पहुंच जाएंगे और हमें एहसास भी नहीं होगा क्योंकि हम उसमें डूबे हुए होंगे। गीता बहन जी अपना अमूल्य समय निकाल कर आई है, क्योंकि मधुबन में ही एक टाइम पे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आप सब जगह यात्राएं भी पूरे भारत में, जहां भी उनको इनविटेशन होता है, तो आजकल हमें पता है हम सभी बड़ी बहनों को बिल्कुल टाइम नहीं होता है, सब जगह इनविटेशन होते हैं। हम बहुत भाग्यशाली है जो गीता बहन हमको यहाँ मिल गए, इसीलिए हम अच्छा शाम को जा रहे। देखो है ना, संकल्प तो राइट था। तो बिल्कुल हम बहुत भाग्यशाली है जो गीता बहन जी हमें आज मिल गई, उनसे हम ज्ञान का खजाना बहुत ध्यान से लेंगे, ऐसी शुभ आशा है। ओम शांति। अभी पहले बाबा की याद में बैठेंगे, उनसे दृष्टि लेंगे, फिर क्लास सुनेंगे।
सजीव तन को जब मैं भूल दो मिनट खड़े होना है, थोड़ा हाथ पांव स्ट्रेच कर लो। खड़े खड़े दौड़ो थोड़ा हल्का हल्का। हाँ और हल्का हल्का जंप, एकदम हल्का तबीयत अनुसार। ये बड़े अच्छे लगते हैं कठपुतली जैसे है। अब दो दो की जोड़ी बन जाओ, आगे पीछे। हाँ पहली दूसरी लाइन आमने सामने, तीसरी चौथी ऐसे। नमस्ते करो एक दो को। सभी देवी देवताएं हैं ना, इसलिए एक दो को नमस्ते करो। सलाम वालेकम, सलाम वालेकम करिए। सलाम वालेकम हरीश भाई। हाँ हैंडशेक करिए। ओम शांति कहिए। पीठ थपथपाइए। शाबाश। हाँ एक दो के, एक दो के। हाँ मुस्कराइए, गले लगिए। बहुत अच्छा। आज की मुरली की एक पॉइंट एक दो को बताइए। याद है कि याद करनी पड़ेगी। कौन सा पाठ बाबा ने पक्का कराया। याद नहीं है, सुना रहे हैं एक दो को। याद नहीं है तो दृष्टि दीजिए और। बहुत अच्छा बैठिए। आज दो बात कौन सी बाबा ने पक्की कराई। हाँ एक तो वैर नहीं, एक दूसरे वैर नहीं। हाँ वरदान वे। पर बाबा ने तो एकदम जोरदार बात कह दी कि जो वैर करता है वो हाफ कास्ट है, एकदम क्वालिटी डाउन, सेकंड हैंड माल हो गए। वंडरफुल ना, क्योंकि हम कल्याणकारी बाबा के कल्याणकारी बच्चे हैं, तो किसी से भी वैर द्वेष ईर्ष्या माना हाफ कास्ट हो गए। और कौन सा पाठ पक्का कराया आज, कोई गोली मारे चाहे छत गिर पड़े कुछ भी हो। हाँ निर्भय। हाँ निर्भय, निर्भयता का पाठ पक्का कराया। हम तो बाबा के पास जा रहे हैं, हाँ कुछ भी हो तो। कितना अच्छा पाठ पक्का करा है। बहुत अच्छा। सभी तपस्वियों का हार्दिक स्वागत है। मधुबन की भूमि, तपस्या की भूमि। पर यहाँ की तपस्या नेचुरल इजी, मेहनत नहीं है यह। इस भूमि के वाइब्रेशंस स्वयं भगवान आदि देव ब्रह्मा और आज की मुरली किसको याद किया, जगदम्बा माँ, इसकी तपस्या से भरी हुई ये भूमि, जहां भगवान इसका मालिक है। कोई व्यक्ति का नाम नहीं है इस भूमि पर। बाबा से कोई पूछते थे कि बाबा ये सब किसका है, तो बाबा कहते थे बच्चों का है। और बच्चों से कोई पूछते थे तो बच्चे क्या कहते थे, बाबा का है। ऐसी भूमि जहां कोई मनुष्य मालिकी का हक नहीं करता है, माना कोई व्यक्ति की छाप नहीं। दिनचर्या ऐसी है कि नेचुरल योग लगता रहे, तो सहज योग का अनुभव करने आए हैं। और बेहद का घर सेंटरों में तो हॉल छोटे हैं, तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, खिसकते रहो खिसकते रहो, वही योग चलता है। यहाँ आप आराम से बैठो, इतने अच्छे अच्छे स्थान है, बाबा की याद के अच्छे अनुभव कर सकते हैं। और पिछले 2 मास से यज्ञ में तो भट्टियां चल ही रही है, जून मास से यज्ञ में तो भट्टी का ही वातावरण है, पर भक्ति में भी अगस्त और सितंबर तपस्या के ही दिन होते हैं। श्रावण मास कितना त्योहार भक्ति, विशेषकर शिव की ही भक्ति करते, तो वहां भी तपस्या का वातावरण। पर्युषण भी अभी अभी गए, रमजान मास भी था। हर धर्म में तपस्या का महत्व है, हर धर्म में तपस्या का महत्व है। क्रिश्चियन लोग भी ईस्टर के दिनों में 15 दिन विशेष तपस्या करते हैं, उसमें कोई न कोई नियम धारणा, जो आत्म संयम की बातें हैं वो अपनाते हैं। इससे समझ में आता है कि मानव जीवन में तपस्या और संयम का बड़ा ही महत्व है। टोटल भक्ति की उत्पत्ति ही किस लिए हुई, आत्म शुद्धि और परमात्मा प्राप्ति, बस। द्वापर युग में कितना न धन वैभव था, कोई कमी नहीं थी। इतिहास पढ़ते होंगे, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का समय, हर्षवर्धन का समय, धन वैभव था, पर फिर भी भक्ति क्यों? कोई गरीबी नहीं थी, धन वैभव का अभाव नहीं था, लेकिन सिर्फ देहभान में जो आ गए, आंतरिक पवित्रता और शांति गई, तो इंसान को
भगवान की ही याद आई। इसलिए द्वापर में भक्ति शुरू हुई। कितने प्रकार से मेहनत की, पूजा पाठ किए, भजन कीर्तन किए, यात्रा की, व्रत उपवास किए, होम हवन किए, ये सब किस लिए किया? इंद्रियों पर संयम आ जाए। सही ज्ञान नहीं था तो जो समझ में आया वो किया, है ना? पर ये क्यों किया, मतलब महत्व समझा कि जीवन में विषयी आकर्षणों से मुक्त रहना चाहिए। इंद्रियां विषयों के आकर्षण में न जाएं, इसके लिए ही ये सब कुछ किया। सहज रीति नहीं हुआ तो दमन हठयोग से भी किया। पहले सहज मार्ग भक्ति का, पर उससे भी नहीं हुआ तो हट दमन भी किया, इतना कष्ट भी सहा। अब समझ में आता है कि बाबा ने पूरे संगम युग में एक ही पाठ पढ़ाने के लिए आदि से अंत तक उसका स्मृति भी दिलाई, बार बार रोज हमें कहा, वो आत्मभिमानी स्थिति है ना। एक भी मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा ने ये पाठ न पढ़ाया। माना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी पढ़ाई है, हमारी तपस्या है। हमें कौन सी तपस्या करनी? मौन तपस्या भट्टी है ना, तपस्या कौन सी करनी? हमारी पहली तपस्या देहभान से न्यारे रहना। हर क्षण आत्मा कर्मेंद्रिय से कर्म करती है, हर क्षण कर्मेंद्रिय के आकर्षण से देह के भान से परे रहना है। कितनी बड़ी चीज है। आत्मा का ज्ञान न होने के कारण उन्होंने शरीर को कष्ट दिया। जैसे कोई व्यक्ति को कहा जाए कि आपको यहां से बाहर नहीं जाना है। एक है कि सेंसिबल व्यक्ति समझकर जाएगा नहीं, पर अगर ये समझ नहीं आती है और बाहर जाने के प्रयास करते हैं तो हम क्या करते हैं? दरवाजे बंद कर दें, है? तो द्वापर में ऐसा किया। आत्मा के ऑर्डर पर मन बुद्धि कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाई तो उन्होंने कर्मेंद्रियों को ही जबरदस्ती कंट्रोल करना शुरू किया। आंख बंद करते हैं, मौन करते हैं, एक ही आसन में बैठते हैं, कर्मेंद्रियों को कष्ट हठ दमन से संयम लाते हैं। पर संगम युग में हमारी साधना सहज है, पर तपस्या चाहिए उसमें भी। विधि सहज है क्योंकि मूल सत्य बाबा ने हमें बता दिया ना। भक्ति में मेहनत इसलिए लगी कि सत्य ज्ञान नहीं था ना। पर करना जरूरी था इसलिए हठ दमन किसी भी रीति से करना चाहा। हमें पहला ही सत्य बाबा ने ऐसा बता दिया कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। ये एक ही सत्य बाबा ने ऐसा बता दिया, हमारा भोगी से योगी जीवन बन गया। पहले ही पाठ से परिवर्तन हुआ। इस पहली स्मृति के परिवर्तन से कहां दिन रात देह में फंसे हुए थे, शरीर को नलाना धुलाना श्रृंगारना खिलाना पिलाना श्रृंगारना शरीर निर्वाह कमाना शरीर के मित्र संबंधी आराम, टोटल बुद्धि हमारी देह में ही थी ना। देह संबंध दुनिया प्रवृत्ति, पर इस एक ही सत्य से बुद्धि देह से निकल गई। स्वयं के प्रति अपने अविनाशी आत्मस्वरूप के प्रति बुद्धि चली गई। समझ में आ गया कि सिर्फ खाना पीना सोना जीवन नहीं है। स्व उन्नति, स्वयं में सत्य ज्ञान गुण शक्तियां भरना जीवन का वास्तविक पुरुषार्थ ये है। अब वो महसूसता कांस्टेंट बनी रहे और हम नेचुरल आत्मभिमानी बने, उसके लिए रोज बाबा पाठ पढ़ाते, रोज ये मूल पहली बात कितनी बार बाबा रिवाइज कराते। हम समझते हैं कई बार कि ये मोस्ट कॉमन पॉइंट हर मुरली में आता है, और कोई पॉइंट याद नहीं होगा तो क्या बताएंगे आज बाबा ने क्या कहा? तो क्या कहे कि बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर। हम समझते हैं कि ये कॉमन बात है, ये कॉमन बात नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। इसलिए स्वयं भगवान बार बार रिवाइज कराते। नंबर वन आत्मा ब्रह्मा रोज चिंतन करके बताती, अंडरलाइन कराती है बार बार। तपस्वी जीवन का एहसास ही तब आता है जब हम अपने को देहभान से न्यारा महसूस करते हैं। अंदर ये स्मृति आती है, ब्रह्मा बाबा ने खुद को आत्मभिमानी बनाने के लिए कितना पुरुषार्थ किया। बाबा की जीवन कहानी तो पढ़ी है ना? बाबा लिखते थे शुरू में, पाठ पक्का करते थे, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है। मालूम है ना ब्रह्मा बाबा की युगल का नाम जसोदा था, राधे आत्मा है बाबा की पुत्रवधु का नाम, अपनी ब्रजेंद्र दादी जो थी ना बॉम्बे साइन में, उनका लौकिक पहले नाम ये राधिका था। नारायण आत्मा है बाबा के बेटे का नाम। देह संबंध के भाव को समाप्त करने के लिए बाबा ने ये लिखा। बाबा ने खुद के पीछे ये मेहनत की। एक गृहस्थी नंबर वन तपस्वी बन गया ब्रह्मा बाप। तो लिखो, अपनी डायरी खोलो, आपके जो पति पत्नी माँ बाप भाई बहन है ना उनका नाम सहित लिखो। मैं आत्मा हूँ, पिता का नाम लिखो, वो भी आत्मा है। माँ का नाम लिखो, वो भी आत्मा है। पति है तो उसका नाम लिखो, कुमारों को नहीं लिखना है, कुमारियों को नहीं लिखना है, इसलिए बोल रहे हैं। भाई बहन युगल का नाम लिखो, वो भी आत्मा है। बच्चे हैं उसका नाम लिखो, वो भी आत्मा है। ये तो सिर्फ मूल परिवार, बाकी तो कितना विस्तार है वो तो अलग, पर ये मूल अब मन से करो, इमर्ज करो और मन ही मन कहो, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, विजुअलाइज करके कहो उसे। क्योंकि हमें मेहनत वहां ही करनी है, जो रोज हमारे संपर्क में हैं, साथ रहते हैं, काम करते हैं, अपने ऑफिस वाले बिजनेस में डे टू डे ज्यादा से ज्यादा जिसके संपर्क में आते हैं, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। तो केवल समझ नहीं, केवल स्मृति नहीं, स्मृति के साथ विजुअलाइज करके रियलाइज करना, तो हम आत्मभिमानी बन सकेंगे। वरना पवित्र बन जाएंगे पर आत्मभिमानी नहीं बने। समझ रहे हैं ना अंतर? संबंध पवित्र बनेंगे पर भाव, व्यवहार, अधिकार वही पति का, पत्नी का, बच्चे का रहता है। सिर्फ पवित्र नहीं बनना है, रूहानी बनना है, रूहानियत, उसके बाद दिव्यता आती है। बाबा की मुरली बताती है, क्योंकि मुरली मेजोरिटी ब्रह्मा बाबा का चिंतन है, शिव बाबा तो सिर्फ मूल सत्य बताते हैं, मूल सत्य ज्ञान का विस्तार ब्रह्मा बाबा करते हैं, उसका चिंतन है। मुरली बताती है ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, इसलिए बाबा मुरली में बताते हैं, बाप ब्रह्मा मुख से बोल रहे हैं, तुम बच्चे कानों से सुन रहे हैं। ये रोज के उसमें आता है, तो अपने निजी कर्मों में, ये हमारे अपने निजी कर्म है, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना देखना चलना, ये हमारे पर्सनल काम है। पहले उसमें आत्म स्मृति आत्म भान का पाठ, हमें आत्मभान आत्मभिमानी स्थिति बनानी है ना, कॉन्शियसनेस डेवलप करनी, माना बार बार महसूस करें इस शरीर रूपी गुफा में, मस्तक पर मैं ज्योति जग रही हूं। मैं इन आंखों से देखती हूं, महसूस करें हम कैसे अलग हैं। हम खिड़की से देखते हैं, ये खिड़की है, हम उसमें से देखते हैं तो हम भी दिखते हैं ना, खिड़की और बीच में हम दिखते हैं ना। हम इस खिड़की से देखते हैं, मैं बिंदु ज्योति दिखाई दूं, महसूस कर। जितना देह भान से डिटैच रहती, ये अलौकिकता रूहानियत आती है। फिल्मों में जो एक्टर देवी देवता बनते हैं ना, उनको ये प्रैक्टिस कराते हैं। उनकी दृष्टि, चेहरा दिव्य दिखाई दे, उसके लिए ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करें। शरीर लौकिक है, मैं आत्मा अलौकिक हूं। ये भौतिक है, शरीर भौतिक है, मैं आत्मा दिव्य हूं, अलौकिक। आत्मा शरीर द्वारा संसार के संपर्क में आती है। पूरा संसार पांच तत्व से बना, शरीर पांच तत्व का है, आत्मा शक्ति है, शरीर तत्व है। मैं आत्मा शरीर द्वारा इस संसार के संपर्क में आते, ये माध्यम है। कर्म करते करते द्वापर में यही भूल हुई ना, स्व को भूल गए, शरीर समझने लगे, तो दुनिया से अटैच हो गए। उन्होंने सारी दुनिया छोड़ी, जंगल में गए, गुफा में बैठे बिचारे, पूरी जिंदगी उन्होंने हिमालय में पहाड़ों में निकाली। और शुरू में जो गए वो तो तपस्या के लक्ष्य से ही गए, कितनी कठिन चीज। हमें दो दिन भी कोई जंगल में छोड़ के आ जाए तो हाँ, कितनी बड़ी चीज है। पर सिर्फ एक सत्य को भूलने के कारण इतना कष्ट सहना पड़े। बस वो मूल बात प्रथम बाबा ने हमें बता दी, आप आत्मा हैं और इससे अलग है, इससे अलग है। आत्म भान को बनाए रखने के लिए बाबा ने ये विधि बनाई कि जिससे भी मिलो दृष्टि से मिलो, जिससे भी मिलो पहले उसे स्पिरिचुअलाइज्ड करो। कितनी अच्छी वे बाबा ने निकाले कि ऐसे ही नहीं मिलो। लौकिक में तो मिलते ही हम बात करने लगेंगे, गले लगेंगे, पूछताछ है ना। बाबा कहते किसी से भी मिलो एक क्षण दृष्टि देकर मिलो। हर मुलाकात को स्पिरिचुअलाइज्ड करो। इसमें हमें कोई कहने की भी जरूरत नहीं। किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। ऐसे नहीं भाई खड़े रहो पहले मैं दृष्टि देता हूं, ऐसे नहीं। नेचुरल मतलब किससे मिले माना मुझे पहले वो रूहानी स्वरूप याद है। जैसे दादियों का मेथड वही है, बाबा आते हैं अव्यक्त बाप दादा आते हैं पहले क्या करते दृष्टि देते। हम भी लौकिक में अलौकिक में ज्ञानी अज्ञानी कहीं भी एक क्षण पता भी नहीं चलता है पर हमारी अवस्था बनी रहेगी और उससे महसूस जरूर होता है कि कुछ अलग लोग है ये। ये हमें करना होगा। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति के बगैर योग हो ही नहीं सकता है। शिव बाबा से हम जुड़ नहीं सकते। योग का पहला अभ्यास ही खुद को शरीर से अलग आत्मा समझना, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होता है। तो चार बेसिक अभ्यास है। आत्मस्मृति, मुझे अंदर ही अंदर ये अवेयरनेस रहे मैं आत्मा देख रही हूं, बोल रही हूं, सुन रही। दूसरा आत्मदृष्टि, जिसको भी देखे रूहानी नजर से देखे। तीसरा आत्म धर्म में स्थित होकर कर्म करना, आत्माभिमानी माना आत्मस्मृति केवल नहीं आत्म धर्म में स्थित होकर कर्म करना। तो अपने आप हर कर्म श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ हो जाता, सत्य हो जाता। जो आत्मभिमानी स्थिति में होगा हर कर्म यथार्थ होगा, यथार्थ। बुद्धि सही निर्णय लेगी, सही कर्म होगा। वो ये नहीं कह सकता मैं आत्मा समझ कर आपको मारती हूं, होगा ऐसे? जो आत्मा समझेगा ऑटोमेटिक उसका कर्म यथार्थ होगा। मैं बाबा की याद में ही फिल्म देखती हूं, होगा? जो बाबा की याद में होगा वो निर्णय भी सही लेगा ना। मुरली में आता है ना, बाबा ने कहा कि कच्चे अगर बायोस्कोप देखें तो माथा ही घूम जाएगा। माना बाबा के कच्चे बच्चे अगर बायोस्कोप समझे ना, उस समय उस जमाने में बाबा के जमाने में बायोस्कोप कहते थे, फिल्म देखें तो उसका तो माथा ही खराब हो जाए। तो बाबा के एक बच्चे ने पूछा कि बाबा इसका मतलब हम पक्के तो देख सकते हैं ना? तो बाबा ने कितना अच्छा आंसर दिया कि पक्के को ऐसी इच्छा होगी ही नहीं। जो पक्का है वो गंदे दृश्य देखेगा ही नहीं ना, उनको ऐसी इच्छा ही नहीं होगी। आत्मधर्म और चौथा आत्मदर्श, स्वदर्श, बार बार स्वनिरीक्षण। तो सभी एक दो से अलग अलग बैठ जाओ, अलर्ट, अभ्यास करेंगे। अपना डायरी पेन एक तरफ सब रख दो, जो नीचे बैठ सकते हो सिर्फ अभ्यास के लिए तो वो आ सकते हैं नीचे, काफी जगह है। फिर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं जाके, पर जिनको जो बैठ सकते हो 15 मिनट भी नीचे, तकलीफ हो वो नहीं आएंगे, पर जिनको सहज हो अपनी अपनी कुर्सी पर सामान रख दो। आइए इधर आइए, एक लाइन इधर बहनों की, एक लाइन भाइयों की बन सकती है। आइए आइए, चलो। सब बातों से डिटैच हो जाए, आसपास की व्यक्तियों से, परिस्थितियों से डिटैच हो जाए। मन के विस्तार को समेट लें, वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाए। स्वयं में मस्त हो जाए। राइट साइड घूम जाइए, सहज बिल्कुल शांत, हलचल नहीं, सिर्फ शरीर से घूमे, स्वयं में एकाग्र रहे। पहला अभ्यास आत्मस्मृति। मैं स्वयं आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, शरीर विस्तार है, मैं आत्मा सार हूँ, सत्व हूँ। शरीर एक वृक्ष के समान है, मैं आत्मा चैतन्य बीज हूँ। मैं आत्मा एक शक्ति हूँ, ज्योति हूँ। शरीर तत्व है, मिट्टी है। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। कर्मेंद्रियों से कर्म करती हूँ, पर मैं इनसे अलग हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक इन कर्मेंद्रियों की राजा। राइट साइड घूम जाइए, दूसरा अभ्यास आत्मदृष्टि। हर एक आत्मा है, हम सभी आत्माएं एक शिव बाबा के बच्चे हैं। हम आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। मुझे स्पष्ट है कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मेल बॉडी फीमेल बॉडी, मैं शरीर से अलग आत्मा शक्ति हूँ। मुझे हरेक को रूहानी नजर से देखना है। राइट साइड घूम जाइए, तीसरा अभ्यास आत्मधर्म में स्थित होकर हर कर्म करना। मुझ आत्मा का धर्म स्वधर्म शांति और पवित्रता है। असली धाम में असली स्वरूप में मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, सत्य हूँ। मुझे हर कर्म शांति से, ही से। ज्ञान स्वरूप बनकर करना है। जब मैं स्व में स्थित होकर कर्म करती हूँ, मैं यथार्थ कर्म कर सकती हूँ। अभूल रह सकती हूँ। राइट साइड घूम जाइए। चौथा अभ्यास, स्वदर्शन। आत्मदर्शन। स्वयं का दर्शन। मुझे स्वयं पर ध्यान देना है। मुझे अपने चिंतन को, विचारों को चेक करना है। मन वचन कर्म को चेक करना है। जब मैं स्व में स्थित रहती हूँ, मन अंतर्मुखी बनने लगता है। मैं स्वयं के प्रति केंद्रित हो जाती हूँ। जब मैं आत्माभिमानी बनती हूँ, बुद्धि शुद्ध और शक्तिशाली बनने लगती है। मेरे कर्म, यथार्थ होने लगते हैं। बुद्धि का भटकना समाप्त हो जाता है। मेरी वाणी ज्ञान युक्त बन जाती है। ज्ञान अमृत बनकर मुख से निकलता है। ओम ये हमारी बेसिक अभ्यास है। इससे हम अपनी आत्मस्थिति को अंतर्मुखी आत्मभिमानी बनाते जा सकेंगे। हमारा लक्ष्य आत्मभिमानी स्थिति से शुरू कर स्वराज्य अधिकारी तक पहुंचना है। कर्मेंद्रिय जीत बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं ना, जो पहला पाठ वो ही अंतिम पाठ। चाहे नष्टो मोहा, चाहे निर्भय बन, ये दो महत्वपूर्ण स्थिति हमें जीवन में प्राप्त करनी है। नष्टो मोहा जो बाबा कहते हैं, अंत में कोई याद न आए, वो स्थिति भी आत्मभिमानी स्थिति के अभ्यास से ही शुरू होती है। न्यारा होते होते डिटैच साक्षी होते जाते। देह संबंधों से नष्ट हुआ, और निर्भय। आज कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी, बाबा ने कितनी ऊंची स्थिति से और एकदम सहज बात बाबा ने की। हम बैठे हैं, छत गिर जाए कोई बात नहीं, हम तो जा रहे हैं बाबा के पास। मारा कितनी बाबा ने ऊंची अवस्था से ये बात कही है, तब इतना सहज वो कह सकते। कोई गोली मारता है, शरीर को गोली लगेगी ना, शरीर मरेगा, आत्मा को तो मार नहीं सकते, तो डरना क्या। निर्भय, देह से भी डिटैच, बाबा की जीवन भर की प्रैक्टिस, बाबा ने कहा ना नाटक पूरा हो रहा है, 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब वापस घर चल रहा है। सचमुच चलना है, ऐसे ही बात नहीं है। जैसे भक्ति में कोई गया तो बोलते थे स्वर्ग गए, ऐसी बात नहीं है ये। सचमुच हम अंत पर खड़े हैं, ड्रामा के एंड पर हम खड़े हैं। वापस घर जाना है, उसी की ये तैयारी है सारी। कैसे बाबा ने कन्वर्ट किया, धीरे 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 डिटैच किया। देहभान से निकालते हैं, लौकिक से निकालने अलौकिक परिवार दिया, दुनियावी कर्मों से निकालने सेवा का साधन दिया, अब अलौकिक परिवार से भी डिटैच। हम उसी समय से गुजर रहे हैं, परिवार बेहद का हो चुका है। छोटा परिवार हो तो मिलना जुलना संबंध ज्यादा रहते हैं, बेहद का हो गए वैसे ही डिटैच। परिवार की जो मुख्य धाराएं हैं, हमारी दादियां सब जा रही, जो बड़े हैं आधार स्तंभ सब अव्यक्त हो रहे हैं, अब डायरेक्ट सिर्फ डायरेक्ट बाबा से कनेक्टेड। ये तो परिवर्तन के लिए एक टेम्पररी बाबा ने साधन दिया था, ईश्वरीय परिवार सेवा, पर इसको आधार नहीं बनाना है। अब अल्टीमेट मैं और बाबा, अब वो चीज है मैं और बाबा। जो भगवान को देना था दिलाना था सब कर लिया संगम युग में, अभी भी मौके मिल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम बाबा को जो भी देना है हम सबको दे दिया है। हमने अपनी आंखों से देखा भगवान को बोलते हुए, प्यार करते हुए, लाइट माइट देते हुए, साकार को नहीं देखा पर अव्यक्त को तो देखा ना। कितने सालों से हम देख रहे, फोर्टी सिक्स ईयर्स अब लास्ट, अभी है मैं और बाबा, पर इससे भी अब अंत में है बाबा ही बाबा, बस बाबा बाबा एक ही अनहद नाद, मुरली में कहा ना बाबा, बस बाबा ही बाबा। ये तपस्या है, कहा ना बाबा ने, और कोई याद ना आए, मैं भी मुझे याद ना आऊं, अपने से भी डिटैच, बाबा ही बाबा। ये स्थिति हमें बनानी होगी, चाहे हम बनाएं, चाहे समय और परिस्थिति बनवावे, पर ये बनानी है। शुरुआत, आधार ये आत्माभिमानी स्थिति है, जिसकी ये साधना कच्ची रह जाती है संस्कार परिवर्तन नहीं होता। थोड़ी भी अपवित्रता, विकार संस्कार में रह जाते हैं। हो सकता है हम लोग आए ज्ञान में, सेवा में लग गए, क्योंकि सेवा का ही पीरियड था, हमारी सेवा करना भी यथार्थ था समय अनुसार। बाबा के बच्चे बने, परिवार बढ़ा, संदेश मिला, हम विश्व में फैल गए, लोगों के सामने प्रत्यक्ष हैं हम, जो जानते भी नहीं थे आज ब्रह्मा कुमार कुमारी को सारी दुनिया जानती है। ये हमारी सेवा का रिजल्ट है। अब बाबा चाहते हैं फिर से स्व के प्रति आ जाओ, बैक टू सेल्फ। आवश्यक थी बाबा ने विस्तार में भेजा, शुरू में यज्ञ निवासी थे, बाबा ने सबको सेवा में भेजा, दादियों में बाबा ने बल भरा, गंगा बहती है ठहरती नहीं करके सबको भेजा सेवा में. हम तो सेवा के प्रवाह में ही आए. अब वही बाबा कह रहे हैं अब अवस्था के तरफ आओ, स्थिति के तरफ आ जाओ. अब आज का स्लोगन था ना, अब जो समय है वो चेहरे और चलन से सेवा का है. इसलिए हमें ऐसी स्थिति बनानी है. हमें देखें बाबा याद आए, हमें देखें शांत हो जाए, हमें देखें अंतर्मुखी हो जाए. ये होना चाहिए. उसमें मेन रोल ये आत्माभिमानी स्थिति का है. इसलिए योगी को आसन पर स्थित बताते. आज बताया ना, अचल अडोल एक रस आसन धारी तपस्वी. वो देह पर दमन करके अचल अडोल बनते है ना, जहां बैठते वहां से उठते नहीं. हाथ ऊपर तो ऊपर, पांव ऊपर तो ऊपर, ऐसी तपस्या करते हैं ना वो लोग. पर वास्तव में इसका अर्थ क्या है, वो ये है, निरंतर आत्माभिमानी. अचल कौन है? शरीर हलचल है, मैं आत्मा अचल. शरीर क्या है? हलचल है ना, हर क्षण बदलता है. मैं आत्मा अचल हूं, अडोल हूं, एक रस. उसमें स्थित है. हमने ये अनुभव किया है कि जो स्व में स्थित है उनको हर बात बहुत क्लियर समझ में आएगी, स्पष्ट दिखाई देगी, राइट डिसीजन होगा. जो स्व में स्थित होगा वो दूसरों को भी यथार्थ समझ सके. बाबा कहते हैं जब तुम दूसरे के लिए सोचते हो कि ऐसा है ऐसा है, माना उस घड़ी तुम भूल गए हो कि मैं कैसी हूं. जिनको स्व का एहसास है कि मैं कैसी हूं, उससे दूसरे के लिए ये विचार आएगा ही. जितना रियलाइजेशन क्लियर यथार्थ, तुरंत परिवर्तन होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा. जब हम आत्माभिमानी नहीं हैं, देह भान है तो झूठ है, बनावट है, मिलावट है, दिखावट है, जो योगी के लक्षण नहीं है. ना हम स्व के नजदीक जाएंगे, न बाबा के नजदीक जाएंगे। बस एक बेस को ही ठीक करना है, अपने आप सब ठीक हो जाता है। और इस स्थिति का आनंद, प्राप्ति, अनुभूति इतनी ऊंची है कि उसके आगे और कोई इच्छा नहीं होती। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। तो अब जो चार और अभ्यास जरूरी हैं संपूर्ण आत्मभिमानी बनने के लिए, अब वो चार अभ्यास करें। पहला स्वमान। स्वमान में रहना, हमारा सर्वश्रेष्ठ स्वमान है। हम कौन हैं, किसके हैं और किस कार्य के लिए अब निमित्त है, बार बार महसूस करते हैं। तो हमारा कर्म साधारण होगा ही नहीं। दूसरा स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन, ये समय स्वपरिवर्तन का है। बाकी सब की चिंता छोड़ो, हम बन जाएं तो भी बहुत है, अब सब की चिंता छोड़ो। मुझे संपूर्ण बनना है। बाप समान बनना, इतना परिवर्तन करना। तीसरा स्व सशक्तिकरण, सेल्फ एम्पावरमेंट। मैं अच्छी बनी हूं, पवित्र बनी हूं, ज्ञानी बनी हूं, योगी बनी हूं, नियम मर्यादाएं संयम हैं, पर ये सब मजबूत बनाना है। कुछ भी उल्टा हो जाए हम कमजोर ना हो। हम बने हैं पर हिल जाते हैं, कभी कभी हिल जाते हैं। कल ही एक माता सुना रही थी कि मैं और मेरे युगल दोनों ज्ञान में चलते, बहुत लगन, बहुत सेवा, पढ़ाई सब, श्रीमत, नियम मर्यादा, मतलब बरोबर सब। अचानक पति अपने बिजनेस की कमाई लेके 14 लाख रुपए थे, बैंक में कोई जमा कराने जा रहे थे और वहां ही पीछे से किसी ने देख लिया होगा, जान लिया होगा, ऐसा माथे में कुछ डंडा मारा, बेहोश हो गए, लुट के वो चले गए, बच गए पर हिल गए, अवस्था हिल गई, बाबा से नाराज हो गए। माता रोज आती है, पर भाई नाराज हो गए बाबा से, क्यों ऐसा हुआ? मुझे मना नहीं करते हैं, जानते हैं सही है बाबा, ज्ञान सत्य है, पर उसी ज्ञान श्रीमत पर चलने वाला मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जो पिछले संडे की मुरली थी उसमें था ना एक बात, हाँ, बाबा ने पांच प्रकार के बताए कि एक है जो माया को फेस नहीं कर पाते, ऐसे करके वहां के वहां ही रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। लास्ट एक बाबा ने बताया कि मंजिल तक पहुंच जाते हैं और अचानक ऐसा हिसाब आ जाता जो फैस छोड़ देते हैं। इसलिए मजबूत बनाना है, शक्तिशाली, सेल्फ एम्पावरमेंट, कुछ भी मुझे हिला न सके। सब कुछ चला जाए पर मेरी गति, मेरी स्थिति से होगी ना, वो तो गया ही, पर अब आगे की गति भी क्यों बिगाड़ो? हिलना नहीं है, माना संशय नहीं, प्रश्न नहीं। बाबा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, श्रीमत कल्याणकारी, और चौथा स्वराज्य अधिकार। स्वराज्य अधिकारी, अधिकारी की स्थिति अनुभव करें। बहुत अच्छा है, मधुबन में मौका है, साइलेंस में, अच्छा गहराई में जाके सोच सकते हैं खुद के लिए अच्छा पुरुषार्थ का प्लान बना सकते हैं, और गहराई से आप सोचना इस पर। ओम शांति।
ओम शांति। आत्माभिमानी स्थिति का आधार क्या है, गीता देवी ने बहुत सुंदर रीति से बताया, और उसको कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, वो भी सभी समझ गए होंगे और उसका अभ्यास हर रोज करेंगे। इसलिए गीता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। ताली ने एक हाथ की है ना।